ओपनिंग नरेशन एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
परिचय, तो आज हम जिनकी जिंदगी और काम को समझने की कोशिश करेंगे वो है मैडम क्यूरी,
और हमारे पास है उनकी बेटी ईव क्यूरी की लिखी हुई जीवनी मैडम क्यूरी अ बायोग्राफी।
ये किताब सिर्फ एक आप कह सकते हैं महान वैज्ञानिक की कहानी नहीं है।
बिल्कुल नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक असाधारण इंसान के संघर्ष की कहानी है, उनके दृढ़ संकल्प की और हाँ, विज्ञान के प्रति उनके गहरे जुनून की दास्तान है।
हाँ, मारिया स्कोलोडोव्स्का क्यूरी, पोलैंड में जन्म और फिर फ्रांस को अपनी कर्मभूमि बनाया। वो सिर्फ एक भौतिक विज्ञानी या रसायनज्ञ नहीं थी।
नहीं, वो विज्ञान की दुनिया में एक मील का पत्थर है, सही मायनों में। सोचिए, पहली महिला जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, और आज तक अकेली ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें दो अलग अलग वैज्ञानिक क्षेत्रों में, पहला भौतिकी में 1903 में और फिर रसायन विज्ञान में 1911 में, ये सम्मान मिला है।
और उनकी कहानी मुझे लगता आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, उतनी प्रेरणा देती है। कैसे उन्होंने गरीबी का सामना किया, समाज के पूर्वाग्रहों का, वो भी एक महिला होने के नाते।
हाँ, और निजी जीवन में भी त्रासदियां कम नहीं थी। इन सब के बावजूद उन्होंने विज्ञान की दुनिया में क्रांति ला दी।
बिल्कुल, और ईव क्यूरी की किताब हमें सिर्फ उनकी वैज्ञानिक उपलब्धियों के बारे में नहीं बताती, बल्कि उनकी निजी जिंदगी, उनकी भावनाओं, उनके मूल्यों की एक दुर्लभ झलक भी देती है। तो चलिए इस असाधारण जीवन की परतों को खोलते हैं।
हाँ, देखते हैं कि हम उनसे क्या सीख सकते हैं आज।
कालानुक्रमिक यात्रा, क्रोनोलॉजिकल जर्नी,
प्रारंभिक वर्ष और रचनात्मक प्रभाव। तो कहानी शुरू होती है 1867 में वॉरसॉ पोलैंड से। उस समय पोलैंड पर रूस का कब्जा था। उनका असली नाम था मारिया सोलोमिया स्कोलोदोव्स्का, लेकिन घर में सब उन्हें मान्या कहते थे।
और परिवार काफी पढ़ा लिखा था, माता पिता दोनों ही शिक्षक थे। पिता व्लादिस्लाव गणित और भौतिकी पढ़ाते थे, लेकिन उनकी देशभक्ति की वजह से, मतलब पोलैंड के प्रति लगाव के कारण, रूसी अधिकारियों ने उन्हें कम महत्वपूर्ण पदों पर भेज लिया था। तो घर में एक तरह का दबा हुआ माहौल था।
हाँ, और उनकी माँ ब्रोनिस्लावा, वो लड़कियों के लिए एक बहुत जाना माना स्कूल चलाती थी, लेकिन फिर उन्हें टीबी हो गया, ट्यूबरकुलोसिस, और उन्हें काम छोड़ना पड़ा।
और दुखद बात यह है कि जब मानिया सिर्फ 10 साल की थीं, तब उनकी माँ की मृत्यु हो गई। इससे पहले भी 7 साल की उम्र में उनकी बड़ी बहन जोफिया की टाइफस से मौत हो गई थी। मतलब बचपन में ही दो बड़ी त्रासदियां।
जाहिर है, इन घटनाओं का बहुत गहरा असर पड़ा होगा उन पर। ईव क्यूरी लिखती भी हैं कि इन सब वजहों से मानिया छोटी उम्र में ही काफी गंभीर और बेहद दृढ़ निश्चयी बन गई।
हाँ, उनका पूरा ध्यान जैसे पढ़ाई पर ही टिक गया था। वही शायद एक सुरक्षित कोना था उनके लिए। ऊपर से रूसी दमन का माहौल था, जहां पोलिश पहचान को, भाषा को, संस्कृति को दबाया जा रहा था।
बिल्कुल, उनके परिवार में शिक्षा का मतलब सिर्फ ज्ञान पाना नहीं था, वो इसे गुलामी से मुक्ति का रास्ता मानते थे, अपनी संस्कृति को जिंदा रखने का तरीका। इसीलिए वो छुप छुप कर पोलिश इतिहास और साहित्य भी पढ़ती थीं।
उदय और संघर्ष, अब उस दौर में पोलैंड में, खासकर वॉर्सो यूनिवर्सिटी में, महिलाओं का पढ़ना मुमकिन नहीं था, दरवाजे बंद थे उनके लिए।
हाँ, और विदेश जाकर पढ़ना बहुत महंगा था, और स्कोलोडोव्स का परिवार की आर्थिक हालत, जैसा आपने बताया, अच्छी नहीं थी।
यहीं पर मानिया और उनकी बड़ी बहन ब्रोनिया के बीच वो मशहूर समझौता हुआ। ईव क्यूरी ने उसे उत्कृष्ट समझौता कहा है।
अरे वाह, ये क्या था?
कमाल का था। मान्या ने तय किया कि वो पोलैंड में गवर्नेस का काम करेंगी, मतलब बच्चों को पढ़ाएंगी, पैसे कमाएंगी, ताकि ब्रोनिया पेरिस जाकर मेडिकल की पढ़ाई कर सके।
अच्छा।
और जब ब्रोनिया डॉक्टर बन जाएंगी, तो फिर वो मान्या की पेरिस में पढ़ाई का खर्चा उठाएंगी।
कमाल है, कितना विश्वास और आपसी सहयोग था दोनों बहनों में।
बिल्कुल। तो मान्या ने करीब 6 साल गवर्नेस के तौर पर काम किया। ये साल उनके लिए आसान नहीं थे। अकेलापन था और बौद्धिक रूप से एक सूखापन सा था। अमीर घरों में बच्चों को पढ़ाना, जहां खुद की पढ़ने की तीव्र इच्छा को दबाना पड़ता था। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो रात में जागकर गुप्त रूप से गणित और भौतिकी पढ़ती रहीं, और वॉरसॉ में एक गुप्त फ्लोटिंग यूनिवर्सिटी चलती थी, उसमें भी हिस्सा लेती थी।
फ्लोटिंग यूनिवर्सिटी, ये क्या थी?
ये असल में पोलिश युवाओं के लिए गुप्त कक्षाओं का एक नेटवर्क था, रूसी शिक्षा प्रणाली का विरोध करने का एक तरीका। ये दिखाता है कि ज्ञान की प्यास कितनी ज्यादा थी उनमें।
बिल्कुल। और फिर आखिर वो दिन आया 1891 में, 24 साल की उम्र में मान्या पेरिस पहुंची, सॉर्बोन विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, और यहीं उन्होंने अपना नाम थोड़ा फ्रेंच तरीके से मैरी रख लिया।
हाँ, लेकिन पेरिस में छात्र जीवन कोई फूलों की सेज नहीं थी।
बिल्कुल नहीं, वो अक्सर अटारी के बेहद ठंडे छोटे कमरों में रहती थीं। सर्दियों में पानी तक जम जाता था।
बाप रे।
खाने के पैसे भी मुश्किल से जुटते थे। ईव क्यूरी लिखती हैं कि कई बार तो सिर्फ मक्खन लगी ब्रेड और चाय पर ही दिन गुजारना पड़ता था। ये सब पढ़कर लगता है कि
हाँ,
हमारी आज की छोटी छोटी मुश्किलें तो कुछ भी नहीं।
सच में।
और इन भयानक मुश्किलों के बावजूद उनका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर था।
और नतीजा?
नतीजा शानदार था। 1893 में उन्होंने भौतिकी में मास्टर्स डिग्री परीक्षा में पहला स्थान हासिल किया। फर्स्ट क्लास, फर्स्ट।
अरे वाह।
और अगले ही साल 1894 में गणित में दूसरा स्थान। ये उनकी असाधारण इच्छा शक्ति, उनकी लगन और हाँ, उनकी प्रतिभा का जीता जागता सबूत था। प्रमुखता और करियर सफलताएं। और 1894 ये साल उनकी जिंदगी में एक और बड़ा मोड़ लेकर आया। उनकी मुलाकात हुई पियरे क्यूरी से।
हाँ, पियरे क्यूरी उस समय के जाने माने भौतिक विज्ञानी। और ये सिर्फ दो लोगों का मिलना नहीं था, बल्कि विज्ञान के इतिहास की सबसे कामयाब, सबसे अटूट साझेदारियों में से एक की शुरुआत थी।
कमाल की बात यह है, जैसा लिखा है, कि पियरे ने फौरन मैरी की असाधारण प्रतिभा को पहचान लिया और उन्हें अपने बराबर का वैज्ञानिक माना। ये उस जमाने के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी।
बिल्कुल, उस समय विज्ञान की दुनिया में पूरी तरह पुरुषों का दबदबा था। पियरे का मैरी को बराबरी का दर्जा देना, ये न सिर्फ उनके खुले विचारों को दिखाता है, बल्कि मैरी की प्रतिभा की चमक को भी साबित करता है। उन्होंने 1895 में शादी कर ली।
और शादी के बाद मैरी ने अपनी डॉक्टरेट के लिए विषय चुना। वो हेनरी बेकरेल ने जो हाल ही में रहस्यमय यूरेनियम किरणें खोजी थीं, उनसे बहुत प्रभावित थीं।
हाँ, और यहीं पर उन्होंने इन किरणों के गुण को समझाने के लिए रेडियोधर्मिता या रेडियो एक्टिविटी शब्द गढ़ा। ये शब्द ही उनका दिया हुआ है।
अच्छा।
और उनका विचार वो क्रांतिकारी था कि ये किरणें किसी केमिकल रिएक्शन से नहीं निकल रही, बल्कि ये खुद परमाणु का अंदरूनी गुण है, एटम का। ये विचार उस समय की सोच के बिल्कुल लड़ था।
फिर उन्होंने पिच ब्लेंड नाम के खनिज पर काम शुरू किया, जो यूरेनियम का स्रोत है, और उन्होंने पाया कि ये अयस्क उसमें मौजूद यूरेनियम की मात्रा के हिसाब से उम्मीद से कहीं ज्यादा रेडियोधर्मी है।
हाँ, बहुत ज्यादा। इसी आधार पर उन्होंने ये परिकल्पना की, ये अंदाजा लगाया कि जरूर इसमें कोई नया, अब तक अनजान तत्व छुपा हुआ है, कोई ऐसा तत्व जो बहुत ही ज्यादा रेडियोधर्मी है।
और पियरे वो मैरी के काम और उनकी सोच से इतने प्रभावित हुए,
इतने ज्यादा, कि उन्होंने अपना खुद का जो क्रिस्टल पर शोध चल रहा था उसे छोड़ दिया और मैरी के साथ इस खोज में पूरी तरह जुट गए। ये दिखाता है कि उन्हें मैरी की काबिलियत पर कितना भरोसा था।
इसके बाद जो हुआ वो तो मतलब
विज्ञान के इतिहास में मेहनत और लगन की एक अविश्वसनीय कहानी है। उनके पास कोई अच्छी लैब नहीं थी।
लैब? अरे वो तो एक पुराना टपकती छत वाला शेड था, जहां गर्मी सर्दी से कोई बचाव नहीं था। और सोचिए, उन्होंने कई टन टन भर पिचब्लेंड अयस्क को हाथों से प्रोसेस किया।
हाथों से?
हाँ, बड़े बड़े बर्तनों में खोलते हुए केमिकल्स को लोहे की भारी छड़ों से घंटों हिलाना, हजारों बार क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया दोहराना। ये न सिर्फ थका देने वाला काम था, बल्कि खतरनाक भी था। उस समय रेडियोधर्मिता के खतरों का अंदाजा तो था नहीं।
रोंगटे खड़े हो जाते हैं सोचकर। और उनकी ये असाधारण मेहनत रंग लाई। 1898 में उन्होंने दुनिया को दो नए तत्वों की खोज की खबर दी।
हाँ, दो नए तत्व। पहला था पोलोनियम। इसका नाम उन्होंने अपने प्यारे वतन पोलैंड के सम्मान में रखा। और दूसरा था वो चमकीला अत्यधिक रेडियोधर्मी तत्व रेडियम। रेडियम, जिसका नाम आज बच्चा बच्चा जानता है। इस अभूतपूर्व काम के लिए 1903 में मैरी क्यूरी, पियरे क्यूरी और हेनरी बेकरेल को संयुक्त रूप से भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला।
हाँ, और यहाँ एक और दिलचस्प बात है। शुरुआत में नोबेल कमेटी ने सिर्फ पियरे और बेकरेल का नाम शामिल किया था, मैरी का नाम नहीं था।
अच्छा, ऐसा क्यों?
शायद वही उस समय की सोच। लेकिन पियरे ने दृढ़ता से कहा कि इस खोज में मैरी का योगदान मौलिक है, सबसे ज्यादा है, और उनके बिना ये पुरस्कार अधूरा होगा। उनके जोर देने पर ही मैरी का नाम शामिल किया गया।
कमाल है, इस तरह मैरी नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला बनी। पियरे का साथ कितना जरूरी था।
बिल्कुल। बाद के वर्ष चिंतन और अंतिम अध्याय। नोबेल पुरस्कार ने उन्हें दुनिया भर में मशहूर तो कर दिया, लेकिन 1906 में उनकी जिंदगी में एक भयानक तूफान आया।
हाँ, पियरे की मृत्यु।
हाँ, पेरिस की एक बारिश वाली सड़क पार करते हुए पियरे क्यूरी घोड़ा गाड़ी की चपेट में आ गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मैरी के लिए ये ये एक ऐसा सदमा था जिससे वो शायद पूरी तरह कभी उभर नहीं पाईं। वो सिर्फ 38 साल की थीं उस समय, और दो छोटी बेटियां थीं, आइरीन और ईव। उनकी परवरिश की जिम्मेदारी भी अब अकेले उन पर थी।
सरकार ने उन्हें विधवा पेंशन देने की पेशकश की थी, है ना?
हाँ, की थी, लेकिन मैरी ने उसे ठुकरा दिया। उन्हें लगा कि ये उनकी योग्यता का अपमान है। इसके बजाय जब सॉर्बन विश्वविद्यालय ने उन्हें पियरे की जगह प्रोफेसर का पद संभालने का प्रस्ताव दिया, तो उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया।
और ये एक ऐतिहासिक क्षण था। सॉर्बन के 650 सालों के इतिहास में वो पहली महिला प्रोफेसर बनी।
बिल्कुल, कहते हैं जब उन्होंने अपना पहला लेक्चर दिया तो उन्होंने ठीक उसी वाक्य से शुरुआत की जहाँ पियरे ने अपना आखिरी लेक्चर छोड़ा था। ये उनकी श्रद्धांजलि थी पियरे को, उनके प्यार को, उनके साझा मिशन को।
निजी दुख कितना भी बड़ा हो, उनका वैज्ञानिक काम रुका नहीं।
नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने अकेले ही शुद्ध रेडियम धातु को अलग करने का मुश्किल काम पूरा किया, और उसके मापन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मानक भी स्थापित किया। ये बहुत बड़ा काम था।
और इसी महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए उन्हें 1911 में रसायन विज्ञान में दूसरा नोबेल पुरस्कार मिला।
हाँ, दूसरा नोबेल। जैसा हमने शुरू में कहा था, दो अलग अलग विज्ञानों में नोबेल जीतने वाली पहली और अब तक की अकेली शख्सियत।
लेकिन ये दूसरी जीत भी आसान नहीं थी। उसी समय के आसपास उनका नाम पॉल लैंगविन नाम के एक शादीशुदा भौतिक विज्ञानी के साथ जुड़ा। वो पियरे के छात्र रह चुके थे।
हाँ, और फ्रांसीसी प्रेस ने इस मौके का फायदा उठाकर उन पर बहुत भद्दे, बहुत क्रूर हमले किए। उन्हें एक विदेशी, एक पोलिश महिला बताया गया जो एक फ्रांसीसी घर तोड़ रही है। इसमें विदेशी विरोधी भावनाएं, लिंग भेदी भावनाएं, सब कुछ था।
उन पर इतना दबाव बनाया गया कि वो स्टॉकहोम जाकर अपना पुरस्कार लेने न जाए।
सोचिए, लेकिन मैरी क्यूरी इन हमलों से टूटी नहीं। उन्होंने पूरी गरिमा और साहस के साथ स्टॉकहोम जाकर अपना पुरस्कार स्वीकार किया। ये उनकी अंदरूनी ताकत का सबूत था।
फिर पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ।
हाँ, और तब उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा, अपनी सारी वैज्ञानिक समझ घायल सैनिकों की मदद में लगा दी। उन्होंने मोबाइल एक्सरे यूनिट्स बनाई।
हाँ, वो पेटाइट्स क्यूरीज, यानी छोटी क्यूरी गाड़ियाँ।
बिल्कुल, वो अपनी बेटी आइरीन के साथ खुद फ्रंटलाइन पर गईं, और इन गाड़ियों से हजारों घायल सैनिकों के शरीर में लगी गोलियां और छर्रे ढूंढने में मदद की। उन्होंने करीब 150 महिलाओं को एक्सरे तकनीशियन के तौर पर ट्रेनिंग भी दी।
युद्ध के बाद उन्होंने पेरिस में रेडियम इंस्टीट्यूट की स्थापना की और उसका नेतृत्व किया। ये संस्थान आज भी बहुत प्रतिष्ठित है।
हाँ, ये जल्दी रेडियोधर्मिता और परमाणु भौतिकी के शोध का एक विश्व प्रसिद्ध केंद्र बन गया। उन्होंने अमेरिका का दौरा भी किया। वहाँ अमेरिकी महिलाओं ने चंदा इकट्ठा करके उन्हें शोध के लिए 1 ग्राम रेडियम खरीदने के लिए $100,000 दिए।
$100,000 उस समय बहुत बड़ी रकम थी।
बहुत बड़ी, लेकिन दशकों तक बिना किसी खास सुरक्षा के खतरनाक रेडियोधर्मी पदार्थों के साथ काम करने की कीमत वो उन्हें चुकानी पड़ी। धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य गिरने लगा।
हाँ, उन्हें मोतियाबिंद हो गया और खून की कमी से जुड़ी गंभीर बीमारियां होने लगी।
और आखिरकार 4 जुलाई 1934 को 66 साल की उम्र में एप्लास्टिक अनीमिया से उनकी मृत्यु हो गई। ये एक ऐसी स्थिति है जहां शरीर पर्याप्त नई रक्त कोशिकाएं बनाना बंद कर देता है। माना यही जाता है कि उनकी मौत लंबे समय तक रेडिएशन के संपर्क में रहने की वजह से ही हुई थी।
विज्ञान के लिए उन्होंने सचमुच अपनी जान दे दी।
मूल दर्शन और मूल्य।
मैडम क्यूरी के जीवन को अगर हम देखें तो उनका जो मूल दर्शन था वो विज्ञान और सत्य के प्रति एक गहरे, लगभग आप कह सकते हैं धार्मिक समर्पण पर टिका था। उजना यानी सत्य की खोज करना, यही इंसान का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी काम है। इसीलिए उनका पूरा जोर ऑब्जर्वेशन पर, मेजरमेंट पर, कठोर प्रयोगों पर था। ये वैज्ञानिक तर्कवाद उनकी रग रग में बसा था।
हाँ, और इस वैज्ञानिक सोच के साथ साथ एक गहरा मानवतावाद भी जुड़ा था उनमें। उनका मानना था कि ज्ञान किसी एक का नहीं है, ये पूरी मानवता का है, इसे खोलकर साझा किया जाना चाहिए।
बिल्कुल, यही वजह थी कि उन्होंने रेडियम को अलग करने की प्रक्रिया का पेटेंट नहीं कराया। सोचिए, अगर वो चाहती तो बेशुमार दौलत कमा सकती थी, लेकिन उन्होंने कहा, रेडियम एक तत्व है, ये सभी लोगों का है।
कितनी बड़ी सोच है। आज के दौर में जहां हर छोटी चीज पर पेटेंट और कॉपीराइट की होड़ है, उनका ये फैसला और भी ज्यादा मायने रखता है।
सही कहा। उनकी जो पोलिश पृष्ठभूमि थी और रूस के अधीन अपने देश की पीड़ा देखने का जो अनुभव था, उसने भी शायद उनमें योग्यता और प्रमाण पर आधारित व्यवस्था में विश्वास पैदा किया होगा। वो मानती थीं कि सत्य की खोज में राष्ट्रीयता, लिंग या सामाजिक वर्ग का कोई मतलब नहीं होना चाहिए।
प्रयोगशाला ही वो जगह थी जहां ये सारे भेद मिट जाते थे, सिर्फ प्रयोग और परिणाम मायने रखते थे।
हाँ, अगर हम उनकी प्रेरणाओं को देखें तो वो भी कई स्तरों पर थीं। सबसे बुनियादी तो थी ज्ञान की प्यास, कुछ नया खोजने का, जानने का शुद्ध आनंद।
हाँ, फिर देशभक्ति का जज्बा भी था, अपने देश पोलैंड का नाम विज्ञान के नक्शे पर लाने की इच्छा। पोलोनियम तत्व का नामकरण इसी का प्रतीक है।
और इसके साथ ही अपने काम से ये साबित करने की एक खामोश लेकिन मजबूत इच्छा भी थी कि महिलाएं भी विज्ञान जैसे पुरुषों के माने जाने वाले क्षेत्र में बेहतरीन काम कर सकती हैं। उनका पूरा जीवन ही लैंगिक पूर्वाग्रहों के खिलाफ एक तरह की चुनौती था।
बिल्कुल, और बेशक मानवता की सेवा का भाव। वो मानती थीं कि वैज्ञानिक शोध सिर्फ ज्ञान के लिए नहीं है, ये अज्ञानता से लड़ने और इंसानी दुख को कम करने का भी एक जरिया है, खासकर चिकित्सा के क्षेत्र में, जैसे कैंसर के इलाज में रेडियम के उपयोग की संभावनाएं जो उन्होंने देखी।
और हाँ, पियरी की मौत के बाद ऐसा लगता है कि उनके अधूरे सपनों और साझा वैज्ञानिक मिशन को पूरा करना उनके जीवन का सबसे बड़ा मकसद बन गया। दुख ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि एक नई तरह की ताकत दी।
प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने का उनका तरीका भी सीखने लायक है। आप उसे शायद उत्पादक सहनशीलता कह सकते हैं, मतलब प्रोडक्टिव स्टोइसिज्म।
हाँ, कुछ वैसा ही, मतलब वो मुश्किलों से हार मानने या शिकायत करने के बजाय उन्हें अपनी ताकत और अपने उद्देश्य को और मजबूत करने का जरिया बना लेती थी।
जैसे
गरीबी का सामना उन्होंने जानबूझकर सादगी अपनाकर किया, वैज्ञानिक शंकाओं का जवाब और ज्यादा कठोर और ज्यादा सटीक प्रयोगों से दिया, निजी हमलों और आलोचनाओं का जवाब अपने काम और उपलब्धियों से दिया।
और सबसे प्रभावित करने वाली बात, पियरे की मृत्यु के बाद अपने असहनीय दुख को उन्होंने विज्ञान के प्रति अविश्वसनीय समर्पण में बदल दिया। वो बाहरी हालात को तो नहीं बदल सकती थी, लेकिन उन पर अपनी प्रतिक्रिया कैसी होगी, इस पर उनका पूरा नियंत्रण था। ये मानसिक दृढ़ता ही शायद उनकी सफलता का एक बड़ा राज थी।
तीन महत्वपूर्ण मोड़।
मैडम क्यूरी की इस असाधारण जिंदगी में कई ऐसे मोड़ आए जिन्होंने उनकी दिशा ही बदल दी, लेकिन अगर हमें तीन सबसे अहम, सबसे निर्णायक मोड़ चुनने हो, तो पहला कौन सा होगा? मेरे ख्याल से तो 1894 में पियरे क्यूरी से उनकी मुलाकात।
हाँ, मैं पूरी तरह सहमत हूँ। ये सिर्फ एक प्रेम कहानी की शुरुआत नहीं थी, ये विज्ञान के इतिहास की सबसे सफल और शायद सबसे अटूट साझेदारियों में से एक का आगाज था।
और पियरे ने न सिर्फ मैरी की प्रतिभा को पहचाना, बल्कि उन्हें बराबरी का दर्जा दिया। ये उस दौर में बहुत दुर्लभ था।
बिल्कुल दुर्लभ। उन्होंने मैरी को प्रोत्साहित किया, उनके विचारों को गंभीरता से लिया और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। इस साझेदारी ने मैरी के लिए उस पुरुष प्रधान वैज्ञानिक समुदाय में अपनी जगह बनाना यकीनन आसान कर दिया। अगर पियरे न होते तो शायद मैरी का रास्ता और भी ज्यादा कठिन होता।
दूसरा निर्णायक मोड़, जाहिर है बेहद दुखद था, 1906 में पियरे की अचानक मृत्यु। इस ट्रेजेडी ने मैरी को भावनात्मक रूप से तोड़ दिया होगा, लेकिन साथ ही उन्हें एक नई स्वतंत्र भूमिका में भी ढाल दिया।
हाँ, अब वो सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं थी, वो दो बेटियों की अकेली माँ थी और पियरे की विशाल वैज्ञानिक विरासत की अकेली वारिस भी।
बिल्कुल, और इस मोड़ पर उनका वो फैसला, सोरबोन में पियरे की प्रोफेसरशिप स्वीकार करने का फैसला, वो बहुत मायने रखता है।
बहुत ज्यादा। ये सिर्फ नौकरी स्वीकार करना नहीं था, ये उनके आत्मसम्मान का, उनकी हिम्मत का और उनके इस निश्चय का प्रतीक था कि वो पियरे के काम को अकेले ही सही आगे बढ़ाएंगी। इस घटना ने उन्हें पियरे की साझेदार की छाया से निकालकर एक स्वतंत्र, आत्मनिर्भर और सार्वजनिक शख्सियत के रूप में स्थापित कर दिया। अब दुनिया उन्हें सिर्फ मैडम क्यूरी के नाम से जानती थी, एक ऐसी ताकत जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था।
और तीसरा महत्वपूर्ण मोड़ जो उनके अद्भुत दृढ़ता को दिखाता है, वो था 1911 में। एक तरफ उन्हें रसायन विज्ञान में दूसरा नोबेल पुरस्कार मिल रहा था, उनके काम का शिखर,
और दूसरी तरफ पॉल लैंगविन के साथ उनके कथित संबंधों को लेकर फ्रांसीसी प्रेस उन पर कीचड़ उछाल रहा था, उन्हें एक विदेशी खलनायिका के तौर पर पेश कर रहा था।
ये एक अविश्वसनीय स्थिति थी।
बिल्कुल, विज्ञान का सर्वोच्च सम्मान और सार्वजनिक अपमान एक साथ। उन पर जबरदस्त दबाव था कि वो पुरस्कार लेने स्टॉकहोम ना जाएं।
लेकिन वो गईं।
हाँ, वो गईं। उन्होंने झुकने से इनकार कर दिया। पूरी गरिमा के साथ स्टॉकहोम जाकर पुरस्कार स्वीकार किया। ये घटना दिखाती है कि वो ना सिर्फ एक महान वैज्ञानिक थीं, बल्कि असाधारण चारित्रिक बल और अपनी सच्चाई पर अटूट विश्वास रखने वाली महिला भी थीं। उन्होंने साबित किया कि निजी हमलों से उनके वैज्ञानिक योगदान का मूल्य कम नहीं हो सकता।
मानवीय सबक और चिंतन, मैडम क्यूरी का जीवन, यह सिर्फ विज्ञान की किताबों के लिए नहीं है, इसमें हम सब के लिए आज भी बहुत गहरे मानवीय सबक छिपे हैं। उनकी कहानी सबसे पहले तो ये दिखाती है कि अगर इरादा पक्का हो और मेहनत करने का जज्बा हो तो किसी भी बाधा को पार किया जा सकता है।
हाँ, सोचिए जरा, एक महिला, एक अप्रवासी, सीमित संसाधनों के साथ उन्होंने क्या कुछ हासिल नहीं किया। गरीबी, लिंग के आधार पर भेदभाव, विदेशी होने के कारण तिरस्कार और निजी जीवन के दुख, उन्होंने हर चुनौती का सामना किया और उससे ऊपर उठी।
बिल्कुल, ये कहानी सिर्फ जन्मजात प्रतिभा की नहीं है, ये अथक न रुकने वाले परिश्रम की कहानी है। मुझे हमेशा उनका वो टपकती छत वाला शेड याद आता है। वो इस बात का प्रतीक है कि महान काम करने के लिए आपको हमेशा शानदार प्रयोगशालाओं या आदर्श परिस्थितियों का इंतजार करने की जरूरत नहीं है।
सही कहा, जो आपके पास है, जहां आप हैं, वहीं से शुरुआत की जा सकती है। ये आज के युवाओं के लिए, जो अक्सर संसाधनों की कमी का रोना रोते हैं, कितनी बड़ी प्रेरणा है।
उनकी सत्यनिष्ठा भी कमाल की है, वो रेडियम का पेटेंट ना करने का फैसला। आज के इस बिजनेस वाले युग में ये लगभग अकल्पनीय लगता है।
हाँ, उन्होंने व्यक्तिगत फायदे के ऊपर मानवता की भलाई को रखा। यह हमें याद दिलाता है कि असली विरासत पैसे या शोहरत में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि आपने दुनिया को क्या दिया, आपने दूसरों के जीवन को कैसे बेहतर बनाया।
और जिस तरह उन्होंने अपने दुखों और मुश्किलों को गुस्से या निराशा में बदलने के बजाय अपने काम के प्रति और गहरे समर्पण में बदल दिया, ये शायद सबसे मुश्किल लेकिन सबसे शक्तिशाली सबक है।
हाँ, प्यारे की मौत के बाद उनका जीवन थम सकता था, वो टूट सकती थीं, लेकिन उन्होंने उस दुख को अपने मिशन को पूरा करने के लिए ईंधन बना लिया। उन्होंने अपनी पीड़ा को उद्देश्य में बदल दिया। ये हमें सिखाता है कि हम अपने हालात को हमेशा नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी प्रतिक्रिया को जरूर नियंत्रित कर सकते हैं।
3. अंतिम निष्कर्ष।
तो मैडम क्यूरी के इस असाधारण जीवन और काम से हम कौन सी 3 मुख्य बातें अपने साथ लेकर जा सकते हैं? चलिए उन्हें 3 तरह की अंतर्दृष्टि में समेटने की कोशिश करते हैं। पहली, एक भावनात्मक अंतर्दृष्टि। भावनात्मक अंतर्दृष्टि, पियरी के साथ उनकी साझेदारी सिर्फ एक वैज्ञानिक गठबंधन नहीं थी, वो एक गहरा भावनात्मक और बौद्धिक प्रेम था। और पियरे की मृत्यु के बाद इसी प्रेम और उनके साझे सपने की याद ने उनके असहनीय दुख को एक आजीवन, एक पवित्र वैज्ञानिक मिशन में बदलने की शक्ति दी। ये दिखाता है कि गहरे मानवीय रिश्ते, गहरा प्रेम हमें सबसे मुश्किल दौर में भी टिके रहने और आगे बढ़ने का मकसद दे सकते हैं।
दूसरी, एक बौद्धिक अंतर्दृष्टि। बौद्धिक अंतर्दृष्टि, उनका सबसे क्रांतिकारी योगदान शायद ये विचार था कि परमाणु स्थिर और अविभाज्य नहीं है, जैसा कि सदियों से माना जाता था। रेडियोधर्मिता की खोज और ये समझना कि ये परमाणु का आंतरिक गुण है, इसने भौतिकी, रसायन विज्ञान की पूरी समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। इसने न सिर्फ नए तत्वों का दरवाजा खोला, बल्कि ये भी दिखाया कि परमाणु के भीतर ऊर्जा का असीम भंडार छिपा है। इसी खोज ने आगे चलकर, अच्छा हो या बुरा, परमाणु युग की नींव रखी।
और तीसरी, एक सार्वभौमिक अंतर्दृष्टि, जो हम सब पर लागू होती है। सार्वभौमिक अंतर्दृष्टि शायद सबसे व्यावहारिक और हम सबके लिए लागू होने वाला सबक यह है कि किसी भी क्षेत्र में बड़ी सफलता के लिए अटूट लगन और समर्पण चाहिए। मैडम क्यूरी की कहानी चीख चीख कर कहती है कि महान काम शुरू करने के लिए आपको परफेक्ट माहौल, बेहतरीन संसाधनों या दूसरों की इजाज़त का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास जुनून है, कड़ी मेहनत करने का हौसला है और अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्प है, तो आप कहीं भी, किसी भी परिस्थिति में शुरुआत कर सकते हैं और असाधारण परिणाम हासिल कर सकते हैं। सार्वभौमिक अंतर्दृष्टि, अतिरिक्त चिंतन बिंदु, प्रोवोकेटिव थॉट।
और हाँ, अंत में सोचने के लिए एक बात और छोड़ जाते हैं। मैडम क्यूरी ने विज्ञान के लिए अपना स्वास्थ्य और अंततः अपना जीवन दे दिया। क्या ज्ञान की खोज की कोई कीमत बहुत ज्यादा हो सकती है? कहाँ है वो रेखा जहां जुनून जिम्मेदारी बन जाता है और वही जिम्मेदारी खतरा? इस पर विचार करना भी मेरे ख्याल से उनकी विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
बहुत गहरा सवाल है ये, सोचने पर मजबूर करता है।
क्लोजिंग नरेशन।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्व विख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ, जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए अकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।